नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया संवाद बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत बांग्लादेश के बीच द्विवार्षिक महानिदेशक स्तर की सीमा वार्ता 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में होगी। कोलंबिया में राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को 50% से अधिक वोट नहीं मिले, दूसरे चरण का मतदान होने की संभावना। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमा के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमा भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमा के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स आज नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद की दूसरी बैठक की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार बैठक में रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाने, सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने, रक्षा उद्योग में साझेदारी, सह विकास और सह उत्पादन के अवसरों पर चर्चा होगी। ये बैठक हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता तथा सुरक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अफ्रीकी संघ ने इबोला से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आपातकालीन निदान, उपचार और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। संघ की स्वास्थ्य एजेंसी सीडीसी, अफ्रीकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि यह सामान युगांडा में पूर्वी क्षेत्रीय समन्वय केंद्र के माध्यम से भेजी गई। ये चिकित्सा सहायता कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी हिस्से में राहत कार्यों के लिए भेजी गई है। सीडीसी ने अफ्रीका के साथ एकजुटता दिखाने के लिए भारत सरकार और लोगों का आभार व्यक्त किया है। भारत और बांग्लादेश 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में द्विवार्षिक महानिदेशक स्तरीय सीमा वार्ता का आयोजन करेंगे। ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के नेतृत्व वाली सरकार आने के बाद दोनों देशों के बीच पहली बैठक होगी। बांग्लादेश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमान सिद्दीकी करेंगे, जबकि भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार करेंगे। एक रिपोर्ट।
दोनों देशों के अधिकारियों के अनुसार सीमा पर बाड़बंदी, अवैध प्रशासन और कथित सीमा हत्याओं पर चर्चा होने की संभावना है। दोनों पक्ष मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी, जल बंटवारे के मुद्दे, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे और ड्रोन घुसपैठ जैसी उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर भी चर्चा कर सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि दोनों देश व्यापार, जहाजरानी, काउंसुलर मामले और जल संसाधन सहयोग पर चर्चा फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिनमें से लगभग 860 किलोमीटर भौगोलिक बाधाओं के कारण बाढ़ रहित है। 4 दिवसीय बैठक के समापन पर 11 जून को चर्चाओं के संयुक्त अभिलेख पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। समाचार कक्ष से अमीशा।
नेपाल के सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने 5 दिन की यात्रा पर आज भारत पहुंच रहे हैं। श्री लामिछाने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। उनका नई दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व सहित कई उच्चस्तरीय राजनीतिक और राजनयिक बैठकों में शामिल होने का कार्यक्रम है। वे भारत में नेपाली समुदाय से मिलेंगे और अयोध्या की भी यात्रा करेंगे। उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल में सांसद बिपिन कुमार आचार्य, दीपक बोरा, निकिता पौडेल और प्रदीप आचार्य शामिल हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। कोलंबिया में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। ये चुनाव पिछले कई महीनों से जारी राजनीतिक तनाव के बीच हुआ। मौजूदा राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो संवैधानिक प्रावधानों के कारण दोबारा चुनाव नहीं लड़ सके, इसलिए उन्हें इवान सेपेडा को उत्तराधिकारी उम्मीदवार बनाया है।
प्रारंभिक रुझानों के अनुसार दक्षिणपंथी उम्मीदवार एबेलार्डो देला एस्प्रियेला सबसे आगे हैं, जबकि वामपंथी सीनेटर इवान सेपेडा दूसरे स्थान पर हैं। हालांकि किसी भी उम्मीदवार को 50% से अधिक वोट नहीं मिले हैं, इसलिए 21 जून को दूसरे चरण का मतदान होने की संभावना है। इवान सेपेडा राष्ट्रपति पेट्रो की शांति वार्ता नीति को आगे बढ़ाने के पक्षधर हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी एबेलार्डो देला एस्प्रियेला और पालोमा वेलेंसिया अपराध और हिंसा से निपटने के लिए कड़े सैन्य रुख का समर्थन करते हैं। चुनाव परिणाम से कोलंबिया की सुरक्षा नीति, मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ रणनीति और अमेरिका के साथ संबंधों की दिशा तय होने की उम्मीद है। विश्व दर्पण के लिए प्राची वाजपेयी।
इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में स्थित रणनीतिक महत्व वाले ब्यूफोर्ट किले पर कब्जे का दावा किया है। इजरायली रक्षा बल ने कहा कि ब्यूफोर्ट रिज और वादी अल सलूकी क्षेत्रों में प्रवेश के बाद इस स्थल पर कब्जा किया गया। उन्होंने बताया कि इस कार्यवाही का उद्देश्य क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना और हिजबुल्ला की क्षमताओं को कमजोर करना है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि सेना ने ब्लूफोर्ट किले पर इजरायल का ध्वज फहराया है। उन्होंने इस घटनाक्रम को सरकारी नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव बताया। श्री नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने IDF को लेबनान में कार्रवाई बढ़ाने का निर्देश दिया है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान के निवासियों को चेतावनी दी है कि जहरानी नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्रों को खाली करने को कहा गया है। और अब खेल समाचार के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच अपने नाम कर लिया।
फॉर अ सेकंड टाइम रनिंग रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बैक टू बैक विनर्स ऑफ द टाटा IPL।
विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के वैभव सूर्यवंशी को IPL क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम की। वे 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। वैभव को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। उधर भारत की महिला फुटबॉल टीम ने गोवा के मरगांव में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-0 से हराकर सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। वियतनाम में 17 वर्ष से कम आयु वर्ग की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण 3 रजत और 5 कांस्य पदकों सहित कुल 10 पदक जीते। हांगकांग में एशियाई Under-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के मोगली वेंकटराम ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। भारत की महिला एथलीटों ने 4x400 मीटर रिले में स्वर्ण और 4x100 मीटर स्पर्धा में रजत पदक, जबकि पुरुष टीम ने 4x400 मीटर में कांस्य पदक जीता।
वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज शुरुआती कारोबार में 2% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ताजा रिपोर्टों के अनुसार अमरीकी कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $89.73 प्रति बैरल और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $93.28 प्रति बैरल हो गई। इसराइल द्वारा लेबनान में सैन्य कार्रवाई का दायरा बढ़ाने के फैसले के बाद तेल बाजार में ये उछाल देखा गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओम मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया संवाद की दूसरी बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत बांग्लादेश के बीच द्विवार्षिक महानिदेशक स्तर की सीमा वार्ता 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में होगी। कोलंबिया में राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को 50% से अधिक वोट नहीं मिले, दूसरे चरण का मतदान होने की संभावना। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर IPL खिताब जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।